नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।